उनको और अपने उपयोग को दोनों को संभालना चाहिए। जो अपने योग और उपयोग को संभाल लेता है वही संबर और निद्रा अपने जीवन में अपना पाता है और वही अपना कल्याण कर पाता, अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता। ऐसा विचार हम निरंतर करें। ये तो अपन थोड़ी देर यहां बैठ के करते हैं, लेकिन रोज जो है थोड़ा समय और अपने पास घर में निकालें, 5 मिनट 10 मिनट बैठें और अपने इन 12 भावनाओं का चिंतन थोड़ा सा करें। 12 भावनाएं पढ़ लेना भी अच्छी चीज है, लेकिन उसको पढ़ करके और फिर विचार करना, अपने जीवन के अनुभव से उसको टैली करना, क्योंकि अनुप्रेक्षा के मायने ही है कि अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन। जब हम ज्ञान के साथ साथ अपनी अनुभूति भी उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं तब वो वास्तव में अनुप्रेक्षा कहलाती है। प्रेक्षा का अर्थ है अत्यंत प्रकट रूप से, ईक्षा अर्थात देखना, वस्तु को उसकी वास्तविकता में देखना और उसको फॉलो करना, अनु मतलब उसके पीछे पीछे जाना। जो चीज मुझे क्षणभंगुर दिखाई पड़ रही है उसके पीछे छुपी हुई शाश्वतता देख लेना। जो आज अपने आत्मा में राग द्वेष और क्रोध इत्यादि कषाय भाव दिख रहे हैं उसके पीछे छिपे हुए स्वभाव को देख लें। जो वस्तु आज शाश्वत दिखाई पड़ रही है उसका निरंतर नष्ट होता हुआ देख लेना। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है, वास्तव में अनुप्रेक्षा ऐसी ही हमें वास्तविकता को देखने की दृष्टि देती है, इसलिए उसका नाम अनुप्रेक्षा है। रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का विचार करें, अपने अनुभव से उनको वेरीफाई करें और कंफर्म करें कि हाँ वास्तव में ठीक लिखा हुआ। श्रद्धान बढ़ता चला जाए। जो बातें हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने लिखी हैं हम उनको कभी अपने व्यवहार में और देख करके उनको मजबूत नहीं बनाते। असल में हमारे मन में कभी ये नहीं आता है कि ये सब बातें ठीक तो लिखी मैंने, जीवन में कितनी बार इनका अनुभव करके देखा। ये बात अपने मन में आनी चाहिए। अब देखते हैं हम जिस संसार में रहते हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, जिस सृष्टि में रहते हैं, उसकी क्या स्थिति है और हमारी अपनी क्या स्थिति है, इस बात का भी विचार करना पड़ेगा। अपने जीवन के बारे में बहुत प्रकार से विचार कर लिया, वस्तुओं के बारे में विचार कर लिया, लेकिन जहां हम रह रहे हैं इस लोक में उसकी क्या स्थिति है। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सह जीव नित धमता। ऊपर वाली लाइन पहले समझ लेवे, उसका कंक्लूजन है दूसरी वाली लाइन। किन्हु न करे न धरे, लगता तो ऐसा है कि जैसे ये सृष्टि किसी ने बनाई हो। सामान्य रूप से तो प्रचलित यही है कि कोई ब्रह्मा नाम का जीव है जिसने इसको बनाया है, और कोई विष्णु नाम का देवता है जो इसको धारण करता है, और कोई शंकर नाम का व्यक्ति है जो कि इसको एक दिन जो है नष्ट कर देता है। लेकिन यहां तो विचार करने पर और दूसरी ही स्थिति समझ में आती है कि अरे भाई, अगर कोई इस सृष्टि को बनाने वाला है, कोई धारण करने वाला और कोई नष्ट करने वाला है, तो उसको किसने बनाया। अब इस प्रश्न का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले कौन था जिसने सबको बनाया, उसको किसने बनाया। कहते वो तो हमेशा से था, तो कहां था वो हमेशा से, रहता कहां था वो, जिस जगह रहता था उस जगह को किसने बनाया। चलो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में उठेंगे और अंत में यही निर्णय अपने जीवन में होगा कि भाई ये दिखाई पड़ता है वो शाश्वत है, ना किसी ने उसे बनाया है, ना कोई उसे मेंटेन और मैनेज करता है, ना कोई उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई उसे नष्ट भी नहीं कर सकता। ये छह द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ है। छह द्रव्य, वो भी हमारे देखने में सिर्फ एक ही द्रव्य आता है, पांच तो दिखाई नहीं पड़ते, उनका काम दिखाई पड़ता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सोल, मैटर, या कि एनर्जी और मैटर, फिजिक्स की भाषा में उसको कहेंगे एनर्जी और मैटर, मीडिया ऑफ मोशन, मीडिया ऑफ रेस्ट, टाइम एंड स्पेस, ये छहों चीजें, वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये साइंस की परिभाषा है, और जैन धर्म कह रहा है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वे छह ही हैं, और जहां वे छहों पाई जाती उसे ही तो लोग कहते हैं। अत्यंत स्पष्ट सी लोक की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने की है। जहां जीव है ये दिखने वाले रूपी पदार्थ जिनमें फ्यूजन फिशन परिवर्तन निरंतर हम अपनी आंखों से देख सकते, बाकी परिवर्तन को तो नहीं देख सकते, हम पुद्गल में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट दिखाई, और कोई है जो कि हमारे चलने में मदद करता है, हर जगह उपस्थित है, कोई है जो हमारे ठहरने में अगर हम चाहें तो वो निमित्त बनता है, और निरंतर परिवर्तन में काल द्रव और हमें एकोमोडेशन की फैसिलिटी देने वाला, स्थान देने वाला आकाश हर जगह उपस्थित है। लोक में इतना ही तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस लोक को मैं ही चलाता हूं, मेरे साथ मेरे अपने जीवन में ये बड़ी मुश्किल है। एक तरफ मैं देखता हूं कि ये सारी सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, ये छह द्रव अपने अपने स्वाभाविक रूप से परिणमन करते रहते हैं, क्योंकि द्रव निरंतर गुण और पर्यायों से परिवर्तनशील है। चेंजेबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर द्रव का स्वभाव है कि वो परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी विद परमानेंस बना हुआ रहता है, शाश्वत है, जिसको अपन सूत्र जी में पढ़ते हैं कि उत्पाद वै द्रव्य उत्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। वो निरंतर जो उत्पाद और वै जो परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद भी द्रव्य अर्थात वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। कोई भी द्रव जीव परिवर्तन करता है विभिन्न गतियों में, यहां पर अपने अपने परिणामों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। पुद्गल में रूप रस गंध और स्पर्श इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बाकी चार द्रव्य हैं उनकी कोई वैभाविक परिणति होती नहीं, वे अपने स्वाभाविक रूप से ही परिणमन करते रहते हैं, वो परिणाम हमारे समझ में नहीं आया। देखो इस तरह की चर्चा में अगर किसी का मन रम जावे तो उपयोग स्थिर हो जाता है। इसलिए लिखा कि लोक भावना में लोक के आकार प्रकार उसकी स्वाधीनता उसका अपना जो निरंतर होने वाला परिवर्तन है और द्रव्य गुण पर्याय इन सब का विचार करने से परिणामों में स्थिरता आती है, और परिणामों में स्थिरता आने से सांसारिक राग द्वेष से बच जाते हैं और संसार की वास्तविकता का बोध होने पर वैराग हो जाता है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस लोक में चारों गतियों में जीव निरंतर भ्रमण करता है और मालूम पड़ जावे कि क्यों भ्रमण करता है, क्या स्थिति है इसकी, तो क्या होगा, वैराग ही आएगा, क्योंकि आवागमन और पंच परावर्तन करने का नाम ही संसार है। मैं चाहूं तो अपने उस अज्ञानता को हटाकर इस लोक में जो मैं निरंतर भ्रमण करता रहता हूं उससे बच सकता हूं। ये लोक भावना जिसमें हम लोक के आकार प्रकार का ही अकेला वर्णन नहीं समझते, वो तो सिर्फ अपने उपयोग की स्थिरता के लिए समझते हैं। मुख्य बात तो ये है कि मैं इस लोक में रह करके अपनी अज्ञानतावश अपने आपों पर पदार्थों का कर्ता मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानतावश और यहां भ्रमण कर रहा सो लोक मां ही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। लोक हमें सृष्टि हमें दुख दे रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन सृष्टि में रहते हुए हम स्वयं अपने दुख का इंतजाम करते हैं, और वो सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने को कर्ता धर्ता भोक्ता स्वामी मान लेता हूं। ये मेरी जो अहम बुद्धि है वो ही मेरे लिए इस लोक में भ्रमण में कारण बनती है। यहां तक पहुंच गए अपन, हमारी अहम बुद्धि। जैसे कि धूप बहुत तेज थी, एक बैलगाड़ी खड़ी थी कार्ट रैक, तो जिसकी थी उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर ले, मैं सो उसने खड़ी कर रखी थी। अब उस बैलगाड़ी के नीचे थोड़ी छाया हो गई थी बैलगाड़ी की वजह से, तो एक बकरी उसके नीचे आन करके खड़ी हो गई। उसको अच्छा लगा कि चलो छाया है, इतनी धूप है बाहर उसमें। अब जब बैलगाड़ी थोड़ी देर में चली तो उसने देखा ये छाया तो आगे आगे बढ़ रही, सो उसने भी छाया में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में बकरी सोचती है कि अरे अब समझ में आया, मैं चल रही हूं इसलिए बैलगाड़ी चल रही, मेरे ऊपर चल रही बैलगाड़ी, मेरे दम पर चल रही बैलगाड़ी। अब बताओ उस बकरी पे हंसी आएगी कि नहीं, उसको समझाने का मन होगा कि नहीं, और अपने आप पे हंसी नहीं आती, अपने को समझाने का मन नहीं होता। हम भी तो यही सोच के चलते कि सबरी घर गृहस्थी हमारे मूल पे धरी भाई, हम ऐसे चल रही, हमने जो देना हुई है तो सब समझ में आ जाए सबरों को, ये काम नहीं हो पे, ऐसा लगने लगता कि नहीं। कई बार जो है समाज में लगने लगता कि हम ही से चल रही सारी समाज, देश के नेता को लगने लगता कि हम ही से चल रहा देश, सबके साथ यही है। ये अहम बुद्धि है कि मैं यहां संसार का कर्ता भोक्ता स्वामी हूं। भैया अगर कर्ता भोक्ता स्वामी है भी तो अपने परिणामों के कर्ता भोक्ता स्वामी तो कथनचित हैं, लेकिन परद्रव के कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं है, बने फिरते हैं जरूर। और अपनी इसी अज्ञानता से हम यहां पर दुख पाते हैं। जब कोई कार्य हमारे अनुकूल बन जाता है उसके कर्तापने में हमें अहंकार आ जाता है, और जब करते हैं और कोई काम हमारे प्रतिकूल हो जाता है तो उस कर्तापने की वजह से संक्लेश होता है, और अहंकार और संक्लेश ये दोनों चीजें ही जो है संसार में दुख का कारण है, हमारे भ्रमण का कारण। इतनी मोटी सी बात और इतनी छोटी सी बात समझने की है। इस लोक भावना को समझते समय हमें अपने उस अहम बुद्धि को समझना चाहिए कि इस लोक में कैसे मैं अहंकार वश, जबकि लोक किसी ने नहीं बनाया, इतना सारा कुछ जो भी परिवर्तन परिणमन हो रहा है सुद्रव का अपने स्वाभाविक रूप से परिणमन हो रहा है, और मैं जो है इन सब का कर्ता बना हुआ बैठा हूं। जैसे कि जरा सी बात पर आज पर ने पूरा श्रीपाल चरित्र पूरा सुन लिया, जरा सी बात थी उसी अहम बुद्धि की वजह से महाराज ने दूसरे ढंग से सुनाया, हमने दूसरे ढंग से पढ़ा था, हमारी मताई ने सुनाओ तो पहले जब हम छोटे हटे 15 साल 14 साल की उम्र में सोने से पहले मैना सुंदरी सुर सुंदरी और कौन कौन से पुराण सब बांच करके सुनाने की आदत थी, उसके बिना हम सोए नहीं 15 साल तक। फिर बड़े हो गए सो होशियार हो गए, सब हो जाती बड़े होने पे होशियार हो जाती, जब तक होशियार नहीं होते तो सब बातें माता पिता की सुनते, अच्छी बातें सुनते। उस समय तो उसमें ये लिखा था कि इतनी सी बात कह दी थी, पिता ने पूछा तू किसका खाती है, सो बड़ी ने तो कह दी कि आप ही का खिलाया हुआ खाती हूँ, कभी ने ऐसा लिखा, कभी का पढ़ा था हमने नाटक मैना सुंदरी नाटक, उसमें ऐसा कहलवाया कि मैं तो अपने, और मैना सुंदरी ने कह दिया था मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। बस इतनी सी बात में चोट पहुंच गई थी राजा साहब को, उनके पिता थे, पिता को कह रही मेरा तो खाती है, मेरे राज्य में रहती और कहती कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, कहती देख लेंगे तुम्हारा भाग्य। और ये सारी उसके साथ घटना जुड़ी हुई जो महाराज ने सुनाई, ये किस बात का उदाहरण है, अपने अहंकार का, अहम बुद्धि का, कि मैं करता हूं। अरे भाई सब अपना पुण्य पाप लेकर के यहां आए हैं और संसार में भ्रमण करते, इतनी मोटी सी बात समझ में आ जावे तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों से हम आसानी से बच जाएंगे। लेकिन सहसा नहीं आता, विचारवान हो तो थोड़ी देर को विचार आता है, और अनुभवी हो तो अपने अनुभव से इस चीज को जान करके और अपने जीवन को जल्दी से और शांतिपूर्वक समतापूर्वक जीने के लिए तैयारी करता है। हम दो उदाहरण हमेशा सुनाया करते हैं, एक प्रोफेसर थे, अहंकार देखना, अपनी अहम बुद्धि देखना, अपन वे प्रोफेसर थे, सच्ची घटना नहीं है, झूठी है बिल्कुल, मनो सुन लो, अपन सबके साथ में भी घटित हो सकती है, उनके साथ में घटित हुई हो चाहे नहीं हुई हो। वे प्रोफेसर थे, अब वे जिस उसमें पढ़ा रहे थे, फिलोसफर तो फिलोसफर है, वो अपनी फिलॉसफी अपने हिसाब से पढ़ाता है, तो बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने क्या है कि बता सकते हो इस पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर देश कौन सा है, तो जोन में अपन बैठी हुई को कहें सुंदर, दूसरे को तो कहें ना भैया ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कह रहे अपना ही देश है सुंदर, कहते और अपने उस सबसे बढ़िया उस देश में और सबसे अच्छा शहर कौन सा है, जोन शहर में बैठी हुई भी पेरिस में बैठी थी, सुनने की पेरिस सबसे बढ़िया है, अच्छी बात है, उस शहर में सबसे बढ़िया चीज कौन सी, कहते हमारा विद्यालय हमारी यूनिवर्सिटी, और कहते उस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, तो कहती हमारा ही फिलॉसफी का डिपार्टमेंट। अब धीरे धीरे पूरी सृष्टि में और कहां तक आ गए, हमारा डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट का मैं कौन हूं, कहते आप HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप, यानी सबसे अच्छा मैं, कहां से शुरू करे थे और आगे कहां तक, ये अहम बुद्धि है उसका उदाहरण है ये। पूरे लोक में मेरी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, इसका विचार दो तरह से किया जा सकता है। एक तरह से तो इस तरह से अपने अहम का पोषण करने के लिए कि पूरी सृष्टि में मेरा देखो क्या दर्जा है, जबकि देखा जाए तो मेरी पूरे नक्शे पर अगर एक मेरी एग्जिस्टेंस के लिए निशान लगाना चाहूं तो निशान लगाने के लिए भी जगह नहीं है उस नक्शे पर। पूरे वर्ल्ड के मैप में इंडिया का और इंडिया में जो है आपके अपने रामगंज मंडी का और उसमें आपके घर का और उसमें आपका बिंदु तक नहीं लगेगा, एक बिंदु के लिए भी नहीं है उतना स्पेस। लेकिन फिर भी हमारा अहंकार कहता है कि नहीं, जैसे कि सब कुछ हम ही से चल रहा है, इस अहम बुद्धि को छोड़ना चाहिए। लोक भावना में लोक का विचार करते हुए, द्रव्य गुण और पर्याय का विचार करते हुए, अपनी स्वाभाविक परिणति का विचार करते हुए अहम बुद्धि को छोड़ना चाहिए। शिवाजी को अहंकार आ गया था कि मैं प्रजा का पालक और प्रजा कितनी संतुष्ट है मेरे से। जैसे ही उनको इस बात का अहंकार आया, उनके गुरुजी रामदास समझ गए कि मेरा शिष्य शिवा थोड़े अहंकार में पड़ गया कि मैं प्रजा का पालक हो गया। थे तो जानकार, विद्या जानते थे, कौन सी वाली विद्या, ज्योतिष विद्या जानते थे, और उससे उन्होंने जान लिया कि सामने पड़े हुए पत्थर में और एक जीव भीतर अपना जीवन जी रहा है। काम करने वाले काम कर रहे हैं, सिवा एक चट्टान पर खड़े हुए सबका इंस्पेक्शन कर रहे हैं अहंकार से भर कर की देखा मेरे राज्य में सब मेरा ही खाते। तो फौरन रामदास ने कहा कि शिवा, ये जो चट्टान पड़ी है ये रास्ते में पड़ी हुई है, इसको तोड़वाओ और अलग करो। अभी करता हूं गुरुजी। उस चट्टान को जैसे ही तोड़ने लगे, उसके तोड़ते ही उसमें से एक मेंढक बाहर चट करके आया। शिवा दंग रह गए। रामदास ने कहा, शिवा शायद इस पत्थर के भीतर पलने वाले मेंढक को भी पानी तुम ही पिलाते हो। अब आ गया शिवा के समझ में कि अरे, मैं व्यर्थ ही अहंकार करता था कि इस पूरे राज्य को मैं चलाता हूं, बताइए उस चट्टान के भीतर पानी कहां से आया और उसके भीतर उस मेंढक का अपना जीवन चल रहा था। ऐसे ही सब अपने अपने जीवन को यहां जीते हैं, हम तो सिर्फ अपने अहंकार बस सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, हम अगर इस तरह का भाव छोड़ के अपने परिणामों के कर्ता हम हैं इतना ही विचार कर लेवे, हम अपने जो खोटे या कि अच्छे परिणाम करते हैं वो हमारे हैं, तब ये वास्तव में हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली, ऊंचा उठाने वाली प्रक्रिया होगी। लोक के मायने आत्मा भी है, दूसरा अर्थ आत्मा भी। तभी तो लिखा कि 14 राजु तंगनम लोक पुरुष संठान, तामे जी बना दीते भरमत हैं बिन ज्ञान। 14 राजु तंगनम और लोक पुरुष संठान, जितना इस मनुष्य का आकार है उसी में ही वो ही आकार लोक का है। सो मानो लोक ही इस चेतना में समाया हुआ है। एक पुरुष अपने दोनों पैर फैला के कमर पर ऐसे हाथ रख लेवे तो जो आकृति बनती सो ही लोक की आकृति है, यानी हमारी जो जीवन की प्रक्रिया है उसी में तो लोक समाया हुआ है। तो दूसरा लोक का अर्थ है आत्मा, लोक का दर्शन करना यानी आत्मा का ही दर्शन करना। सारी सृष्टि हमारे ही भीतर है, लेकिन हम अज्ञानतावश जो है और इस सृष्टि में इस लोक में भ्रमण करते रहते हैं। अगर उसको हम आत्मा को पहचान ले, सारी दुनिया को पहचानना चाहते, तीनों लोकों को जानना चाहते, विदेह क्षेत्र कहाँ है, कब सुमेरु पर्वत तो बताओ महाराज कहाँ है, कह तो हो के सुमेरु पर्वत है, हमने तो देखो ही नहीं है, और सब जान लो। लेकिन कबों कोई ने जा नहीं कही कि जा तो बताओ कि हमारी आत्मा कैसी, हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है। अब वो तो जैसो है सो है, तुम तो पहले जा बताओ कि विदेह क्षेत्र कहाँ है और रास्ता कैसे होते, उसे कहाँ जा। तीनों लोकों के बारे में जानने की तो बहुत उत्सुकता है। सो भैया तीनों लोकों के बारे में तो वो ही जान सकता है जो एकगम जाने ही सो सब्बम जाने ही, जो एकगम अभी ना जाने ही सो सब्बम अभी ना जाने ही, जो एक को आत्मा को जान लेता वो तीनों लोकों को जान लेता, वो जो तीन लोक खंडान जान लेवे और अपनी आत्मा से अनभिग्रह कहते उसका जानना ने जानने जैसा ही है। इसलिए जब हम लोक भावना का विचार करें तो माने कि वो हम अपने ही आत्मा का विचार कर रहे हैं, क्योंकि लोक हमारी आत्मा से भिन्न नहीं है। लोक का स्वभाव क्या है, सबके लिए सब द्रव्यों के लिए जो अवगाहन देता है, हमारी आत्मा भी ऐसी ही हो जावे, इतनी ही निर्मल हो जावे जैसे सिद्धों की आत्मा है कि एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की क्या कथा, नमो सिद्ध अनंत नो, अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए कह रहे कि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती, इतनी विशुद्ध अवस्था की एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की क्या कथा, नमो सिद्ध अनंत नो, उतने ही स्पेस में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है और अपन तो जो है अपनी जगह इस लोक में ढूंढते हैं। ट्रेन में जाएं तो हमारी को जगह ने ले ली गई, सुपेली से अपनों वो बिछा दी, देख ठो रुमाल बिछा दी, ये भैया कौन उ दिन जाके और राष्ट्रपति की सीट पे ने बिछा दी हो कि जो बिछो मा रुमाल जाए हमारी जगह है। जी तो स्थिति है, जरा जरा से स्थान के लिए हम यहां पर और कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती उसी जरा सी एक फुट जमीन के लिए जो है। और देखा जाए तो आकाश तो सबके लिए यहां पर स्थान दे रहा, उसने कभी नहीं कहा ये कि आपको स्थान नहीं मिलेगा। अपन जरूर कह देते कि हम किसी को स्थान नहीं देंगे, हमारे तो हम अपने हमारे रहने के लिए, हमें दूसरी तीसरे नंबर की चीज, तीसरा विचार लोक भावना के समय ये करना चाहिए कि जैसे इस लोक में जो आकाश द्रव्य है और जो अन्य द्रव्य है वे सब अपने अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते, आकाश कैसा है अपने में सबको स्थान देता है, और मैं तो अपने स्वभाव से विचलित हो गया, जीव अपने स्वभाव से विचलित हो जाता, पुद्गल हो जाता, लेकिन बाकी चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश और काल ये अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। आकाश का स्वभाव क्या है, आकाश का स्वभाव तो सब जीवों को अपने में बघा देना है, ऐसा ही क्या मैं अपने जीवन को बना सकता हूं, इतना उदार चित्त मेरा हो सकता है कि जिसमें सबके लिए और स्थान मिले, जैसे लोक में सबके लिए स्थान है, छाओं द्रव्यों को लोक अपने में समाये हुए है, क्या ऐसा ही मैं हर जीव के लिए अपने में स्थान दे सकता हूं, क्या इतनी उदार चित्त वृत्ति, उदार चित्ता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदार चित्त होता है उन्हीं के लिए ये सारी वसुधा अपना कुटुंब हो जाती है, एक परिवार ही नहीं पूरा संसार ही जिनके लिए अपना परिवार हो जाता है। ऐसी उदार वृत्ति जहां हमारे भीतर आवे यही हमारी इस लोक भावना का कहना चाहिए प्रयोजन है। तब क्या होगा, जब उदार वृत्ति आएगी तो अहिंसा आएगी, विदरागता आएगी, ये वास्तव में वही हमारा धर्म है। इस तरह अगर हम विचार करें, एक उदाहरण से समझ लेवे कि ऐसी उदार वृत्ति अपनी है कि नहीं, चर्चा तो अपन अपनी उदारता की बहुत करते हैं लेकिन इतनी उदारता है नहीं अपने अंदर, ऐसी उदारता आनी चाहिए। एक वृक्ष पर वर्षों से एक तोता रहा करता है, उसका जन्म भी उसकी माँ भी उसी पर रही, वृक्ष पर वहीं उसने तोते को जन्म दिया, तो तोते का बचपन से उस वृक्ष से लगाव था, दूर उड़ जाता था लेकिन शाम घिरने से पहले और उसी वृक्ष पर आ जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने आया, उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए हिरण पर बाण चलाया, बाण तो विष से बुझा हुआ था, हिरण तो कुलांचे भर करके उड़ चला गया, लेकिन वो बाण उस वृक्ष के तने में घुस गया और उसका विष धीरे धीरे करके उस वृक्ष में प्रवेश कर गया, तो वृक्ष की जड़ें सूखने लगी और पूरा वृक्ष ही और धीरे धीरे निर्जीव होने लगा, सूखने लगा, पत्ते सब गिरने लगे, फल फूल का तो सवाल ही नहीं उठता है, वृक्ष उजड़ गया, जो पक्षी उस पर थे धीरे धीरे, भैया भरे वृक्ष पे तो दुनिया बैठती है, सूखे पे कौन बैठेगा है? ऐसे ही तो अपने भी जीवन में है, जिनसे अपना स्वार्थ सत्ता है सो आगे पीछे होते और स्वार्थ ने सदे तो सब छोड़ जाते, तो इसी तरह से सब उसको वृक्ष को छोड़ करके चले गए, आपका स्वार्थ साधने वाला, अब कौन सा इसमें फल फूल लगने वाले हैं, ये तो मरने मरने को है, चलो रे अपन दूसरी जगह देख लो। संसार में भी यही करते हैं, इसीलिए तो भ्रमण कर रहे हैं लोक में, इस लोक में यहां से वहां अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने थोड़े से बहुत, वहां से कोई देवता गुजरता था, कहानी है भैया, बच्चों की कहानी है, वैसे ही लेना उस सोने का चूजे सही नहीं है, सही नहीं मानना, सही मान लोगे तो फिर ये सब चीजें अपने जीवन में आना पड़ेंगी, है कि नहीं। सपन तो झूठी मान के एक तरफी डार जाओ ठंडे बस्ते में के फिर बाद में विचार करें जी का धर्म, कहानी है सुन लो अच्छा लगता है, थोड़ी देखो फुर्सत के समय में 5 मिनट कहानी पढ़ो तो चित्त भी अच्छा हो जाता है, ऐसे ही सुन लो कम से, है कि नहीं, कहानी की स्टाइल में नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये कहानी हमारे आपके जीवन में भी घटित होती है, वो तोता वहीं पर बना है, देवता वहां से निकलता, देवता और कोई नहीं है, हमारे भीतर जब देवत आ जाता तो हम ही देवता हो जाते। उसने कहा कि भाई सब तोड़ गए वृक्ष भी, बस अब समझो गिरने गिरने वाला, तुम क्यों बैठे हो, तुम भी उड़ जाओ। वो देवता तो उस तोते की परीक्षा लेने के लिए आया था, ऐसे आड़े समय में ही परीक्षा होती है। अब उसने कहा नहीं मैं तो यहीं पर ठीक हूं, अरे तुम्हारे दाने पानी तक का तो इंतजाम नहीं हो पाता है और तुम यहां पर कितने दिन जियोगे। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था तोते ने, तो उसने कहा मुझे खाने पीने की चिंता ही नहीं है, तो कहते तुम खाओगे पिएगे नहीं तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। कहते अब जीने की भी मुझे कोई विशेष इच्छा नहीं है, जिस वृक्ष पर मैं रहा वही धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है, मेरा जीवन भी उसी के साथ पूरा हो जावे तो मुझे इसमें कोई संक्लेश नहीं है। ऐसी उसकी चित्त वृत्ति थी, ऐसा उसका मन था। अब देवता ने कहा कि देख भाई मैं तुम्हारी इस दृष्टि से बड़ा प्रसन्न, वृक्ष तो नष्ट हो ही रहा है, तुम उसके पीछे अपने प्रेम बस अपना भी जीवन जो है पूरा दे रहे हो, भाई इससे हम तुमसे बड़े प्रसन्न है, वरदान मांग लो, ले भाई आंगन फांगन जो है अब अपन तपन होते अपन से कू कहते हो वरदान मांग लो। तो बात दिक्कत थी, अपन को सोचने पर तो हो सकता वकील वकील लगाना पड़ता कि भाई सही सही बताओ कौन कौन से चीजें मांगी जा सकती, एक ही बार में सबरी मांग ले। लेकिन तोते को उतनी बुद्धि नहीं थी, उसने तो फौरन जैसे ही कहा कि वरदान मांग लो तो उसने कहा कि अगर सचमुच आप देवता हो और वरदान दे सकते हो तो इतना ही कर दो कि मेरे इस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर। बताइए ये है उदार चित्त वृत्ति, अपने लिए कुछ न मांग करके कि हमारे दाने पानी को इंतजाम कर दो, जब ही तो कह सका नहीं हमारे दाने पानी का इंतजाम नहीं, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो इस विष के बुझे हुए बाण से इसका घात हुआ है, कर सको तो इसको हरा भरा कर दो। देवता ने जो है उसको क्या देर लगती है, कहते हैं है? सद्भाव नहीं हमारा देवतापना है, सो सद्भावना से क्या चीज नहीं हो सकती। तो कहते वो वृक्ष पुनः जो है हरा भरा हो गया, तोता इसी में प्रसन्न है कि वृक्ष हरा भरा है, है? और हमारी प्रसन्नता किसमें है, दूसरे को हरा भरा देखने में है का? अरे बिल्कुल नहीं है, दूसरा हरा भरा क्यों है इस बात में हमारी अप्रसन्नता है। अब बताओ हमारी चित्त वृत्ति कैसी है, हमारे अंदर है उदारता या नहीं है, हम करते हैं लोक भावना का चिंतन, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है हमारे भीतर अपने आत्म कल्याण के साथ साथ, और ऐसी उदार चित्त वृत्ति होवे कि सब ही तो जीव हैं, मेरे जैसे ही तो हैं, कौन यहां दुख चाहता है, हे भगवान सब जीवों का संसार के दुखों से छुटकारा होवे, मेरा भी छुटकारा संसार के दुखों से होवे, यही जो है लोक भावना पे विचार करने की चीज है। इसी भावना के साथ कि हम भी ऐसे उदार चित्त वृत्ति को प्राप्त करें, लोक की भावना का चिंतन करते हुए हम वास्तविकता से परिचित होकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा।
हमारा अपमान हुआ तो बड़ा मन को चोट पहुंची और हमारा मन कठोर होने होने को हो गया। हमने कहा छोड़ो क्या करना, अपनी मृदुता बनाए रखो, कोई व्यक्ति सम्मान करे चाहे अपमान करे। तो ऐसे कई अवसर जीवन में आ रहे और हमने ये अपने भीतर खुद झांक करके देख लिया है कि नहीं हमारे भीतर बहुत अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि परिस्थितियों की मजबूरी से हमें अपने जीवन को नष्ट कर देना पड़े ऐसी हमारी कोई नियति नहीं है। हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ से अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते। ये हमारे भीतर एक विश्वास अगर पैदा हो गया है तो हमें एक प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए जिससे कि हमारे भीतर की अनंत संभावनाएं व्यक्त हो सकें। हम जिंदगी भर कहां दूसरे से हाथ फैलाते और अपने जीवन के अच्छे बनाने की प्रक्रिया मांगते रहेंगे, हम तो अपने भीतर स्वयं ही उसको जागृत कर लेवे। जीवन भर भिखारी बने रहने से अच्छा है कि एक बार अपने भीतर की संभावनाओं को प्रकट करके और हम सम्राट की हैसियत से जो कि हमारा अपना स्वभाव है वैसा जीने की कोशिश करें। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है वो रास्ते के किनारे बहुत गरीब भीख मांगता है, लोग दया करके उसको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, पूरी जिंदगी उसकी भीख मांगते गुजर गई। और एक दिन वो नहीं रहा तो लोगों ने और 10-25 लोगों ने उसकी लाश को जैसे तैसे करके दाह संस्कार किया और फिर वो जगह उसके निरंतर वहां रहने से और थोड़ी खराब हो गई थी, तो सोचा कि उसको हटा दें, थोड़ा सा सफाई कर दें। तो सफाई करने के दौरान और कोई चीज उन्हें लगा कि जमीन के भीतर है और उन्होंने उसे निकाला तो सोने के सर्पियों से भरा हुआ एक घड़ा था जिस पर बैठ करके वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो, वो तो एक उदाहरण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर भी ऐसी ही शक्ति विद्यमान हो और हम दूसरे के सामने भीख मांग रहे हो, हाथ फैला रहे हो कि हमारे अपने विशुद्धि का उपाय बताएं, हमारे जीवन के उत्थान का उपाय बताएं, जबकि हमारा अपना वो स्वभाव। आगे ने लिखा कि सबके भीतर सोता है एक झरना स्वच्छ उज्जवल जल का, इस इंतजार में कि कोई आए ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर ऐसी क्षमता, लेकिन सिर्फ इतना है कि उस क्षमता को प्रकट कैसे करें। उस क्षमता को प्रकट करने के लिए जो उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है वो है तप का। तप शब्द सुनने से और हमारे मन में एक भ्रम पैदा होता है, यह कि परंपरागत एक भ्रम हमारे मन में बैठा हुआ है और हम आने वाली पीढ़ी को उस भ्रम को ट्रांसफर करते हैं कि तपस्या के मायने है बहुत कठिनाई का जीवन जीना, जबकि मैं सोचता हूं कि तपस्या करने के मायने हैं जिंदगी को बहुत आसानी से बहुत स्मूथली जीना। बड़ा अजीब लगेगा कि तपस्या से क्या लाइफ स्टाइल बहुत स्मूथ हो सकती है, हो ही जाती है। हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में जितनी मुश्किलें हम अपने जीवन में खड़ी करते हैं, यदि हम अपनी इच्छाओं को कम कर देवें तो वे मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और इच्छाओं को जीत लेने का नाम ही तो तप है। बताइए, अब हमने अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए अपनी इच्छाओं को अगर जीत लिया है तो जीवन आसान नहीं हो जाएगा? तो तपस्या तो जीवन को आसान बनाने वाली चीज है, मुश्किलें तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से खुद खड़ी करते हैं और दोष देते हैं कि मुश्किल तो तपस्या में है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो हमने पैदा कर रखी है अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए, उस मुश्किल को आसान करने वाली प्रक्रिया है तपस्या। बहुत सारी डिजायर्स हैं अपने अंदर, इम्पॉसिबल डिजायर्स जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारी हैं जो कि लग्जूरियस है, जो कि अनावश्यक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जीवन में, ऐसी इच्छाएं भी हमारे अंदर। बहुत सारी हैं जो कि बहुत मेटलिस्टिक है, ऐसी डिजायर भी है। कितने तरह की इच्छाएं हमारे भीतर हैं, क्या इन सबकी पूर्ति के लिए हमारा जीवन बना हुआ है? यह हमें विचार करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जो चीज हमारे जीवन में संभव है उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन ऊंचे उठे उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। ये इच्छाएं तो जरा वाजिब मालूम पड़ती हैं, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन इच्छाओं को अपने जीवन में उत्पन्न करना और फिर बेतहाशा उनकी पूर्ति के लिए पीछे भागना, अपने जीवन में मुश्किल अपने हाथ से खड़ी करना, किसी को क्या दोष दे सकते हैं? अपन ने खुद ऐसा किया। जो जिसको मालूम है कि विश्व में एक ही सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, और हर आदमी उस कोहिनूर को हैं हमारे लिए तकलीफ पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं लेकिन हम उन इच्छाओं को भी करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाए रखते हैं उसी में जबकि हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आवश्यक नहीं होती। आप स्वयं विचार कर लें बहुत सारी इच्छाएं हैं कैसे। मान लीजिएगा कि हमारे पास हमारे अपने जीवन चलाने के लिए 10 25 50 ठो कपड़े चाहिए और हमने रख रखे हैं 1000 और 2000। क्या वो एक साथ एक बार में शरीर पर पहने जा सकते हैं? कोई हमको चक्रवर्ती तो है नहीं कि 96000 रानियां हो और 96000 रूप बनाने की सामर्थ हो। एक ही शरीर मिला हुआ एक पर एक ही कपड़ा पहन सकते ज्यादा चाहो ठंड के दिन में 2-3 पहन लो लेकिन रखे तो सैकड़ों हैं और शरीर एक ही है। तो एक शरीर की पूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है इसका निर्धारण हम कर ले। 100 शरीर हो तो 100 की पूर्ति करेंगे शरीर तो एक ही है। क्या इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान सकते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं इसी वजह से हम अपने जीवन में मुश्किल खड़ी करते हैं लग्जूरियस होते चले जाते हैं। हम बहुत आराम तलवी सीख गए हैं और आराम तलवी ही हमारे जीवन को मुश्किल में डालती है। हम सोचते ये हैं कि आराम तलवी से जीवन आसान बनेगा लेकिन आज तक नहीं बना सबका अनुभव है। तब हमें क्या विचार करना चाहिए कि हम ऐसी इच्छाओं को छोड़ दें। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनसे कि सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है बाकी कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है। पेट भले ही ना भरे लेकिन मन भरने की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा हमको बहुत मुश्किल में डालती है। क्या कभी किसी का मन भरा है? जिसके मन में संतोष है उसका मन तो पूरा भरा है और जिसके मन में निरंतर इच्छाएं उठ रही हैं उसका मन तो कभी नहीं भर सकता। तब क्यों ना हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हट करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली भावनाएं और दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले परोपकार की भावना अपने भीतर डेवलप कर ले। ये तपस्या है। तपस्या को हम इस तरह यदि अपने जीवन में लाएं तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लगता जरूर है तप नाम सुनते ही साथ हम गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज एक और है कि हमने एक ढंग असल में परंपरागत तपस्या का बना लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों तपस्या कर रहे हैं। कोई के उपवास चल रहे हैं, कोई की एकासना चल रही है, कोई अपने रस परित्याग इत्यादि कर रहा है। बहुत अच्छी चीज है, ये भी तप का एक ढंग है लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए इस पर कभी विचार किया? ये जो उद्देश्य से हम विचलित हो जाते हैं तब ये तपस्या हमारे लिए भी कोई काम नहीं दे पाती और दूसरे को इससे कोई मैसेज नहीं मिलता। इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति ने 12 साल तक तपस्या करी और 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब उसके गुरुजी ने पूछा कि क्या हासिल किया, कहते हमने विद्या हासिल कर ली, जल पर हम आसानी से चल सकते। कहले 2 कौड़ी की तपस्या हुई तुम्हारी। 2 कौड़ी देते सो 2 कौड़ी में 2 पैसे देते उस नाव वाले को, सो इधर से उधर कर देता तुम बेकार में 12 वर्ष तक परेशान होते रहे पानी पर चलने की विद्या हासिल कर ली। उद्देश्य क्या है? आचार्य भगवंतों ने लिखा कि हमारी तपस्या का उद्देश्य कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, अर्थात अपने जीवन में जो विकृतियां अज्ञानतावश संचित हो गई उन विकृतियों और विकारों को हटाने के लिए, अपनी कषायों को मंद करने के लिए, अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए तपस्या की जाती है। अगर तपस्या का ऐसा उद्देश्य है तब तो वो तपस्या सार्थक है, वरना वो तपस्या ना हमारे जीवन को ऊंचा उठा पाती ना उससे कोई मैसेज मिलता है। और हम वर्तमान में देखते हैं कि इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी इस तपस्या से विमुख है। अपनी इच्छाओं को तो जीता नहीं और हमने और बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी। तो वो तपस्या पुष्प डाल और वारी सैन का उदाहरण सबसे परिचित है, कोई छिपा हुआ नहीं, तो वो तपस्या सार्थक है, वरना वो तपस्या ना हमारे जीवन को ऊंचा उठा पाती, ना उससे कोई मैसेज मिलता है। और हम वर्तमान में देखते हैं कि इसी वजह से हमारी युवा पीढ़ी इस तपस्या से विमुख है। ऐसी हमारी कमजोरियां जो हमारी मजबूरी की तरह हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं, उनको हम अगर रोज रोज देखते रहें और हटाने के लिए भावना बनाते रहें, तो बहुत आसानी से हम इन चीजों को अपने जीवन में घटा बढ़ा सकते हैं। जो चीजें हम शामिल करना चाहें उनको शामिल कर सकते हैं, जिनको हम निल करना चाहें उनको निल भी कर सकते हैं। और हमारे अपने जीवन का प्रभाव आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं अपने आप से दुखी हूँ, आपको क्या तकलीफ, मैं गुस्सा करता हूँ, आपको क्या मतलब इससे, नहीं भैया, हमारे गुस्सा करने से पास का वातावरण भी बिगड़ता है। हमारे अंदर यदि कठोरता आती है तो आसपास का परिवेश भी दूषित होता है। हम दुखी होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी उस दुख का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हमें यह ध्यान में रख करके कि हमारे अपने जीवन से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक बार बच्चे लोग आपस में खेल खेल रहे, क्या खेल कर रहे थे, बड़े भैया छोटे भैया। उनके यहाँ पर उनके पिताजी दो भाई थे। अब तो खैर कुछ दिन के बाद में चाचा नाम का जीव ढूंढना कठिन हो जाएगा, मौसी नाम का जीव मिलना कठिन हो जाएगा। ये जीव पहले हुआ करते थे, लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि अब तो ऐसा संभव ही नहीं है, ना कोई मौसी होने वाली है, ना कोई चाचा मिलने वाला, ना ताऊ मिलने वाला है कुछ दिन के बाद, क्योंकि अब तो दो दो हैं बस। वो बीच में बात ऐसी आ गई, तो छोटे भैया बड़े भैया का खेल खेल रहे हैं वो दो, उनके पिताजी और उनके चाचा हैं घर में। तो खेल खेलते खेलते और जो बड़ा भैया बना था तो उसने छोटे भैया को जरा गड़बड़ हो गई खेल में तो डांट दिया, तो छोटा वाला कहता कि खेल खत्म, अब नहीं खेलते। अरे क्यों, तो बोलते तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, तुमने डांटा क्यों। बोले वाह, तुम गलत करोगे तुम डांटेंगे नहीं। बोले नहीं, हम छोटे भैया बड़े भैया का खेल खेल रहे हैं और हमने तो बड़े भैया को दादा को कभी भी छोटे भैया को डांटते देखा ही नहीं, इसलिए तुमने डांटा कि खेल गड़बड़। बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं, मेरा कहने का आशय ये है, वे खेल भी खेल रहे हैं तब भी उनके भीतर ये इंप्रेशन है कि उस खेल में भी वो सब बातें जो वास्तविक हैं उनका ध्यान रखना है। अगर परिवार में एक दूसरे के प्रति हम अगर क्रोध का व्यवहार करते हैं, घृणा का व्यवहार करते हैं, कठोरता से पेश आते हैं, तो मानिएगा कि हम अपना ही नहीं अपने आसपास के परिवेश को भी दूषित करते हैं, उन्हें भी वही करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन से जितनी प्रेरणा मिलती है उतनी हमारी वाणी से नहीं मिलती। वाणी से प्रेरणा बहुत थोड़ी मिलती है, जीवन से प्रेरणा तुरंत मिलती है देखने में। इसलिए हमारा प्रयास पिछले कई दिनों से यही है कि हम शरीर और वाणी से धर्म करने के तो बहुत आदि हो गए हैं, लेकिन हमारे मन में हमारे जीवन में भी वे धर्म निरंतर आते चले जाएं, तो हमारे और दूसरे दोनों के जीवन में अच्छा बनने में आसानी होगी। मन वचन काय की सरलता का नाम आर्जव धर्म है। तीनों इतने सरल हैं कि उनकी सरलता कैसे देखने में आती है। एक जगह अपन जब पढ़ते हैं कि मन में हो सो वचन हो चाहिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये इस तरह की प्रक्रिया है कि जिसमें मन वचन काय तीनों के द्वारा ऐसे हम पेश आ रहे हैं कि जो चीज मन में है वो इतनी धली है कि उसको वाणी में कहने में शर्म नहीं लगती और शरीर से करने में कोई गड़बड़ी नहीं मालूम पड़ती। इतना चित्त में सरलता आ गई है और ऐसा चित्त हो गया है, ये अर्थ है मन वचन काय की लिजुता का या की सरलता।
ऐसा नहीं है ना कि जो मन में आया गड़बड़ सड़बड़ वो वचन से कह दिया और वो ही वैसा कि हमारे मन में आ रहा है कि हम आपको एक धक्का दे रहे और आपने दे भी दिया, क्योंकि आज कहा था कि सरल होना चाहिए, धक्का देने का मन में आवे तो दे देना चाहिए। ऐसा नहीं, मन में इतनी सरलता हो कि उसे हम वाणी से सहज रूप से कह सकें और शरीर से भी करने में हमें कोई क्षति ना हो किसी की भी और हमारी अपनी स्वयं की भी। ये मन वचन काय की सरलता है, लेकिन क्या करें ये सरलता हमारी थोड़ी गड़बड़ा गई है। अब थोड़ा दिखावा, थोड़ा प्रदर्शन, थोड़ा बनावटीपन, थोड़ी मिलावट, ये सारी चीजें हमारे जीवन में शामिल हो गई। इन चीजों से हम कैसे बचें, दूसरे के साथ छल करने की, धोखा देने की, उसे ठगने की जो हमारी आदत हो गई है उसे हम कैसे बदलें, और ये अगर आदत हमारी छूट जावे तो सरलता तो हमारा अपना स्वभाव है, मन वचन काय तीनों एकदम सरल हो जाएंगे यदि हम दिखावा ना करें, यदि हम बनावटीपन ना लाएं, यदि हम छल कपट और दूसरे को धोखा देने और ठगने का भाव अपने भीतर ना लाएं, तो हमारा जीवन तो एकदम सरल है ही, हमारा तो वो स्वभाव है। रिजोर भावो आर्यवम योगस अवक्रता आर्यवम, मन वचन काय की वक्रता नहीं होना, टेढ़ापन नहीं होना, यही तो आर्यव धर्म है। अब हम देखें कि ये जो जिसको अपन मायाचारी भी कहते हैं या कि ठगना कहते हैं वो किस तरह का है। मैं सोचता हूं कि जब अपने मन में इस तरह का भाव आ जाता है कि हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें लाभ होगा, ये जो लाभ की प्रवृत्ति हमारे भीतर आती है, तो फिर हम इन सब चीजों को करना शुरू करते हैं। आज जितनी ज्यादा अपने जीवन में कृत्रिमता बढ़ रही है वो छिपी नहीं है, और कृत्रिमता का कारण क्या है, हम अपने को वैसा दिखाना चाहते हैं जैसे हम नहीं हैं, इतना ही कारण है। हम जैसे हैं वैसा अगर हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देवें तो हमें लगता है कि उससे तो हमारी हेटी हो जाएगी, उससे हमें लाभ नहीं दिखाई पड़ता, तब हम अपना लाभ देखने के लिए और इस तरह अपने जीवन को बना लेते हैं कि जिसमें छल कपट, दिखावा, प्रदर्शन, आडंबर, ये सारी चीजें शामिल होने लगती है। हमें इस चीज से बचना चाहिए, सब समझते हैं इस चीज को, और दूसरे के मन में अगर दूसरे के प्रति छल कपट का भाव हो तो वो छिपता भी नहीं है, थोड़े दिन भले ही छिपा रहे लेकिन ज्यादा समय तक वो छिपता नहीं। और इससे क्या होता है, हमारी प्रामाणिकता और हमारी विश्वसनीयता धीरे धीरे करके नष्ट होती चली। जैसे कि सबको मालूम है बच्चे लोगों के यहाँ पर कहानी में आता है कि वो हमेशा दूसरे को तंग करने के लिए और एक अपने खेत में से आवाज देता था कि ये बचाओ भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ों को ले गया, तो सब लोग आकर के इकट्ठे हो जाते थे तो फिर वो हंसने लगता था कि देखा कैसा बुद्धू बनाया, कोई नहीं आया, भेड़िया चोरी आया। और एक दिन जब सच्ची में आ गया था तब फिर कोई मदद करने नहीं आया था। ये बहुत सीधी सी चीज है, ऐसा अगर अपन दूसरे के साथ में मिथ्या व्यवहार करेंगे, ऐसा दूसरे के साथ में छल कपट और धोखा देंगे और उसमें आनंद मानेंगे तो हमारी विश्वसनीयता और हमारी प्रामाणिकता दोनों धीरे धीरे करके और नष्ट हो। आज जो है वर्तमान में यही चीज, हम कृत्रिम हो गए हैं, दिखावा करने लगे हैं, जिससे हमारे प्रति अब लोगों के मन में विश्वास नहीं रहा, संदेह ज्यादा हो गया, यहाँ तक कि परिवार में भी एक दूसरे के प्रति संदेह ज्यादा है, विश्वास कमती है। और भैया रिश्ते तो सब विश्वास से चलते हैं, चाहे भगवान से हमारा रिश्ता हो और चाहे संसार के व्यक्तियों से या वस्तुओं से, जितने भी संबंध हैं वे सब विश्वास के और श्रद्धा के संबंध हैं। इस विश्वास और श्रद्धा को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम कृत्रिमता से बचें, आडंबर से बचें, अपने मन को सरल बनाने की कोशिश करें। सरलता के मायने क्या है, मैं एक दिन बैठे बैठे डिक्शनरी में देख रहा था तो चार पांच शब्द मिले उसके, अपन को थोड़ा विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किन क्षणों में हम सरल हो जाते हैं और किन क्षणों में हम कठिन हो जाते हैं। बस इतना ही, कठोर होना और कठिन होना दोनों में थोड़ा फर्क करना। अपन ने कल कठोर होने की बात समझी थी, आज कठिन और जटिल कॉम्प्लेक्स हो जाना। हाँ, ये एकदम अलग चीज है। हम स्वयं भी जैसे कि कोई चीज उलट जाती ना, जैसे रस्सी वगैरह, तो फिर उसको सुलझाने में कैसा होता है, बहुत मुश्किल जाती है। ऐसा ही अपने जीवन में भी हम कुछ चीजें इस तरह की शामिल कर लेते जिससे कि हमारा जीवन उलट जाता है, वो पूरी जिंदगी हम सुलझा नहीं पाते। ये जो जीवन की उलझन है वो काहे की वजह से, इस दिखावे की वजह से, इस आडंबर की वजह से। आज आपने जैसा शो कर दिया अपने आप को, अब उसको जीवन भर मेंटेन करना पड़ेगा। आज किसी के सामने आपने अपने को जैसा प्रस्तुत कर दिया, अब उसके सामने हमेशा वही चेहरा लगाना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन उलझा हुआ जीवन, और ऐसे कठिन जीवन को हम कैसे सरल बनाएं, इस पर हम विचार करें। तो सरलता के मायने हैं ईमानदारी, सरलता के मायने हैं स्पष्टवादिता, सरलता के मायने हैं उन्मुक्त हृदय होना, और सरलता के मायने हैं सादगी, और सरलता के मायने हैं भोलापन, इनोसेंट, सिंपल, ऑनेस्ट, वार्म हार्टेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीजें हैं सरलता के मायने। ये हमारे भीतर हम झांक करके देखें विभिन्न अवसरों पर कि ये चीजें हमारे भीतर हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इनको धीरे धीरे करके और अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करेंगे। दो ही प्रक्रियाएं हैं, या तो इन चीजों को अपने भीतर प्रकट करें, और या फिर जो इनके अगेंस्ट की चीजें हैं, जो इनके विपरीत बातें हैं, उनसे धीरे धीरे बचने का प्रयास करें। ईमानदार होने पर एक मुश्किल खड़ी हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति हमें धोखा दे सकते हैं। सरल होने पर भी यही मुश्किल अपने जीवन में खड़ी हो जाती है कि फिर लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। मुश्किल ये थोड़ी सी पड़ेगी, पर इसके बावजूद भी हमें अपनी उस ईमानदारी को बनाए रखना है। ये भर ध्यान में रखें, किसी ने हमें अगर ठग लिया है तो हम भी उससे ठगें, ये पशु जगत की बात है, मनुष्य जीवन में ये ठीक नहीं है। कवि ने लिखा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख उपजे पर ठगियां दुख होए। अपने को अगर कोई ठग ले तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इस बात का संतोष बना रहता है कि मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो किसी को नहीं ठगा। लेकिन एक बार दूसरे को धोखा दे दें या दूसरे के साथ छल कपट कर लें तो जीवन भर ही नहीं, अगले जीवन में भी हमें दुख ही भोगना पड़ता। थोड़े से ठगे जाने पर, ठगाए जाने पर थोड़ी देर को दुख उत्पन्न होगा कि देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, लेकिन इतना संतोष मन में रहेगा कि हमने तो किसी के साथ नहीं किया। एक छोटी सी घटना आती है कि ये बच्चों की कहानियां वगैरह में लिखा रहता है ऐसा, लेकिन बड़ा उससे संदेश मिलता है। छोटी छोटी सी घटनाएं भी बड़ा संदेश देती। मैं पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, तो भटक गया तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया। फिर उस पेड़ पर जैसे चढ़ा तो उसने देखा कि उस पर एक रीच बैठा हुआ है, तो उसको बहुत डर लगा कि ये रीच तो हमको खाना जाए। लेकिन वो रीच जो है वो उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने भी देखा कि ये भी विपत्ति में, मुसीबत में पड़ा हुआ। उतने में क्या हुआ कि एक शेर आकर के नीचे पेड़ के बैठ गया। अब तो और मुश्किल हो गई, बच्चों की कहानी ऐसे ही रहती है। हाँ, फिर वो भागते भागते पेड़ पे चढ़ गया, फिर वहां पर एक बीज बैठा हुआ था, फिर एक शेर आ गया वहां पर। अब क्या हुआ कि उस शेर को भी भूख लगी, तो उसने सोचा कि इन दोनों में से एक को अपन ले ले तो काम चल जाएगा। अभी ये थोड़ी देर में थक जाएंगे, सोएंगे तो ही, तो अब दोनों को नींद सही में आने लगी। तो बीज ने कहा कि सुनो, एक एक करके सो अपन, क्योंकि कोई विपत्ति आ जाएगी तो अपन एक दूसरे को बचा लेंगे। तो रीच ने कहा कि ठीक है हम पहले सो जाते हैं। आदमी ने कहा कि हम जगते हैं अभी। रीच सो गया तो शेर ने नहीं पहले आदमी को सुला देते हैं, नहीं वो गड़बड़ हो जाए। ऐसा करें हम तो भूल ही गए कि किसको पहले सुलाना चाहिए। पहले रीच को ही सुलाते, थोड़ा सुधार लिया हमने मन ही मन में सोच करके ऐसा। तो रीच सो गया तो शेर ने कहा आदमी से कि देख मेरे को तो भूख लगी है, एक ना एक को तो दोनों में से मैं खाऊंगी और